Awakening with Brahma Kumaris.
ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत. जब भी कभी जीवन में कंफ्यूजन आती है या कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो हम क्या करते हैं? अपने घर के बड़ों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या करें. एक ही शब्द में अपने अनुभव से जीवन का जो सारा सार होता है वो हमें कह देते हैं और रास्ता एकदम से क्लियर हो जाता है. ऐसा ही होता है जब हम बड़ों से बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं. समय समय पर हम मिलते रहे हैं इस परिवार के बड़ों से भी. जी हाँ, आज फिर दादी जानकी से मिलते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन का जो पूरा अनुभव रहा है, जो सार है, वो कितना महत्वपूर्ण है. कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो रुकावट आ रही है उसे जरूर दूर करेगा. और दादी जानकी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और लगभग 70 साल से इस पूरे ज्ञान को समझते हुए ये जो पूरा विश्वविद्यालय, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय काम कर रहा है, उसकी फाउंडेशन के रूप में रही है. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सस्ते शिवानी. ओम शांति.
ओम शांति.
सस्ते शिवानी, दादी जानकी से अब तो हमारे परिवार भी बहुत अच्छी तरह से परिचित है और जो एक एक सार हमें मिल जाता है, ये जो ज्ञान है, ज्ञान को जब जीवन में अनुभव करके उन्होंने उसे पर्सोनिफाई कर दिया है ऐसा लगता है, और पूरा निचोड़ जो है वो 2 लाइनों में वो बता देते हैं. तो कुछ बताएंगे आप उनके बारे में?
अच्छे टीचर का साइन ही ये है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बात एकदम सिंपल करके और उसको एसेंस में बताते. और वही हम दादी जी में देखते ये विशेषता कि ज्ञान की बहुत गुही है. एंड यू नो, वो लगती सिंपल है बट इट्स सच अ डीप पॉइंट व्हाट शी विल शेयर. But she will share it with so much simplicity and इतनी सरलता में, भाषा में एकदम सरलता होती है लेकिन गहराई होती है. And conviction of experience, कि ये अनुभव किया है जीवन की experience की authority से, उसको इतनी simplicity से कह देती है कि वो point हम जब सुन रहे हैं तो हमें एकदम से touch हो जाता, और जिसको कहें ना, अंदर तक hit करती ये बात कि yes, this is how it works. तो उस पर कोई भी element of doubt या question या confusion नहीं रहता. And that's why we say that she is so powerful, not just with words, but also with the energy that she transmits with the words. तो basically जब उनको हम सुनते हैं तो हमें 2 चीजों का combination मिलता है, knowledge and power. जैसे हम परमात्मा से ले रहे हैं knowledge एंड पावर, तो वो ही जैसे दादीज हैं, तो ये इतने इन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है इतने सालों में कि ये आत्माएं वो बहुत एलिवेटेड स्टेज को जो पहुंच गए हैं, तो जब ये शेयर करते तो नॉलेज और पावर इकट्ठे ट्रांसमिट करते तो सुनने वाले आत्माओं को उसको इनकल्केट करना बहुत सिंपल हो जाता है.
एंड देन अमेजिंग, यू नो, एवरी पर्सन, एवरी जो सोल देयर फील्स दैट शी लव्स देम. अमेजिंग, लाइक हर एक का अपना अपना रिलेशनशिप भी है. सो आइए इस रिश्ते को और थोड़ा गहरा करते हैं और दादी जानकी की ये खास जो बात हमारे लिए है वो सुनते हैं.
खुद को देखो, रियलाइज करो मेरे में क्या कमी है, और की कमी देखने के लिए बुद्धि बड़ा अच्छा जल्दी काम करती है, अच्छी तरह से काम करती है. और खुद के देखने के लिए बुद्धि ठीक काम नहीं करती है.
एक वाक्य में ही दादी ने जीवन के एक बहुत गहराई पर हाईलाइट किया है. इस पर्सपेक्टिव में जो दादी ने कहा कि खुद को देखने के समय बुद्धि काम नहीं करती है, औरों को देखते समय बुद्धि काम करती है. क्यों? क्योंकि खुद को देखते समय मैंने अपने आप को कहा मैं तो राइट हूँ. तो बुद्धि ने उसके ऊपर कुछ भी काम करना, चेकिंग करना, कुछ चेंज करना, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया ना. क्योंकि अपने आप के लिए मैंने कह दिया कि मैं राइट हूँ, तो फिर अपने को देखने का काम फिनिश हुआ, अपने से हटे. क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो रही है, उसका कारण कौन है? कोई और है. तो जब दूसरों को देख रहे हैं क्योंकि हमने ये समझा कि मेरी हर्ट का कारण दूसरे हैं, तो दूसरों को जजमेंट्स और दूसरे के ऊपर क्रिटिकल होने में बुद्धि बहुत ज्यादा काम करती है. और इसलिए बहुत डीप लाइन है वो, जितनी सिंपल लग रही है वो उतनी सिंपल है नहीं. उसी के लिए दादी कई बार अलग रूप से भी कहते कि जो आपकी दूर की नजर है वो बहुत तेज है और नजदीक की नजर बहुत कमजोर है. और राजयोग इसी को रिवर्स कर देता है कि नजदीक को देखें क्योंकि कंट्रोल सारा यहाँ पर है। जहाँ कंट्रोल ही नहीं उसको नहीं चेक करो, जहाँ कंट्रोल है उसको चेक करो, चेक करके साथ साथ चेंज करते जाओ और औरों के लिए एक्सेप्ट करो। और जितना अपने पर वर्क करेंगे फिर एक्सेप्ट करना। See, if I try to accept people, it's very difficult.
Actually, you know,
I can't accept.
जब हमारा अपने ऊपर फोकस हो जाता है ना तो दूसरों की तरफ एक्चुअली ध्यान भी नहीं जाता।
बिकॉज यहाँ आत्मा अगर भरती जाती है, सी हम दूसरे पर जजमेंटल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम हर्ट हो रहे हैं। जहाँ हमारा हर्ट होना कम होता जाएगा तब दूसरे के प्रति जजमेंटल होना ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। इसलिए इट विल हैव टू स्टार्ट विद माई सेल्फ।
दैट्स सो ब्यूटीफुल। कुछ और बातें भी हमारे लिए है आज, तो आइए साथ सुनकर सुनते हैं।
सहनशीलता और सरलता, मेरे को आपको भी लगाऊंगा सभी को, जिसको ये बात दिल को लग गई, दो सहनशीलता यानी सहन करने में शीतल बहुत है, सहन करना पड़ता है वो नहीं। अच्छा, वो सब धीरज है, शांति है, प्रेम है, बड़े धीरज से काम, गंभीरता है, सरलता है। कभी अपन को दुख नहीं देता है, दूसरे को दुख न देना ये ध्यान रखना है बहुत, पर कभी कोई कारण से अपन को दुख नहीं देना है। जिसको बीती को भूलना नहीं आता है वो ज्ञान का स्मरण नहीं कर सकते है, वो सदा सुखी नहीं रह सकते है, सदा सुख दे नहीं सकते है।
बिल्कुल। और जहाँ बात सहनशीलता की दादी ने, सचिवानी एक्चुअली बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि आई हैव टू टॉलरेट, यू नो आई बीन टॉलरेटिंग, मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं कब से सहन करता आ रहा हूँ। तो आई थिंक समवेयर शी वाज ट्राइंग टू से कि वो करना नहीं है कि सहनशील, सहन करना पड़ रहा है, इट शुड बिकम नेचुरल।
सहनशीलता इज, हम उसको एक कॉम्प्रोमाइज, यू नो कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, इन इमोशन से लेते। और दादी ने जो कहा कि सहनशीलता है, सरलता है, शीतलता अपने आप आ जाएगी। सरलता, सिंप्लिसिटी, थॉट्स में क्लैरिटी, उसके पीछे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब ये सुनने में सरल है लेकिन इसको बहुत अटेंशन से हमें चेक अगर करें तो हमारे थॉट्स में आज वो सिंप्लिसिटी ही एक्चुअली खत्म होती जा रही है। हम हर चीज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज, और उसमें हमारे कहें प्रेजुडिसेस, हमारे बायस किसी के प्रति, अपनी लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें जब हमारे परसेप्शन में आ जाती तो हमारी सरलता खत्म हो जाती है और हमारी एक एक थॉट के पीछे इंटेंशन क्वेश्चन मार्क बन जाता। जिसकी सरलता होगी उसकी हर थॉट के पीछे जो इंटेंशन होगी ना उसमें बहुत सिंप्लिसिटी होगी। उसमें आप उसकी बात को सुनेंगे आपको कुछ डाउट नहीं आएगा कि एक्चुअली इनका इसके पीछे
assumptions जो है ना,
कोई और मीनिंग तो नहीं था। यू नो यू विल नॉट गेट दैट वाइब्रेशन
बिकॉज हाँ, अगर हम में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना, अगर हम में अंदर कोई अपने को लेके, या वेरी ट्रू यू नो कि स्वमान की कमी, ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स,
बहुत सारे
कई सारी चीजें हमारे पास होती है, तो उसने जो कहा वो तो मतलब ठीक है, जो उसने कहा ही होगा, हम अपने आप एज्यूम भी कर लेते हैं।
और ऐसे ही आत्मा जैसे दादी है, इनकी थॉट्स में सरलता है। अब दादी जब कुछ भी कहेंगे किसी को या हमें कुछ भी कहते तो हमें उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, यू नो क्या कहा, इसके पीछे इनका क्या मोटिव था, ऐसा कहना चाहते थे, देयर इज नो टू थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि वो जो कहते हैं वो मैसेज जस्ट ट्रांसमिट स्ट्रेट बिकॉज वो सरलता से है, उसके पीछे कोई और एजेंडा नहीं है, कोई और इंटेंशन नहीं है। तो वो दूसरे तक भी, इवन इफ आई एम इन माई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वट एवर, बट शी सेज समथिंग टू मी बिकॉज इट इज कमिंग विद दैट सिंप्लिसिटी, आई डोंट हैव टू थिंक टू मच।
अनदर वेरी ब्यूटिफुल थिंग शी सेड कि लेट गो नहीं करते ना पास्ट को,
और तब कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि पास्ट के साथ हमारी जो भी यादें, ज्यादातर कई प्लेजेंट मेमोरीज होती हैं, लेकिन प्लेजेंट मेमोरीज को भी जब याद करते तो इस दर्द में चले जाते कि अब ये नहीं
है,
यू नो अब ये नहीं है। और पास्ट की जो बाकी हर्ट की मेमोरीज हैं वो तो जितनी बार याद करेंगे उतनी बार उस हर्ट को हम क्रिएट करते जाते। तो दादी ने उसको एकदम जैसे स्टैम्प लगाकर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट की तरह कहा है कि पास्ट को जो भूलेगा नहीं वो कभी सुखी नहीं रह सकता. एंड दिस इज देयर एक्सपीरियंस. यू नो वंस आई मेट दादी, लाइक टुडे शी वाज नॉट वेल, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. नाउ आई मीट हर टुमारो, तो अगले दिन जब मैं मिली तो आई जस्ट आस्क्ड, दादी आपकी तबीयत कैसी है? तो कहते क्या हुआ मेरी तबीयत को? तो आई सेड दादी कल तबीयत ठीक नहीं थी ना. शी सेड वो कल था ना,
खत्म हो गया ना वो तो. हाँ,
वो
याद ही
कल
नहीं.
था, तुम आज क्यों उसको बात को याद करते हो? एंड आई वॉज लाइक ओके, यू नो इट्स लर्निंग, वी आर लर्निंग एट एवरी स्टेप व्हेन वी आर अवेयर. शी सेड देखो बहन कल तबीयत ठीक नहीं थी, आज ठीक हूँ ना मैं. आज जब आप वो बात फिर से पूछोगे तो आपने वो वाली बात को फिर से क्रिएट किया. तो उन्होंने मुझे कहा मुझको देखकर आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. ऐसे नहीं दादी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे, फिर क्यों पास्ट की बात को याद किया? एट दैट लेवल. तो दादी को हम जब भी मिलते, इट्स नॉट अ मीटिंग, इट्स अ लेसन ऑफ लर्निंग फॉर लाइफ टाइम. एंड वो ऐसी बात होती है, मतलब ये बात जो मैंने आपके साथ आज शेयर की, दिस मस्ट बी वेरी वेरी ओल्ड, ये कई साल पहले मैंने सुनी होगी, लेकिन आज भी मुझे वो भूलती नहीं है. एंड आई यू नो इट्स अ लेसन कि रिवाइंड नहीं करना, हो गया फिनिश्ड. इवन वी हैव सीन विद दादी कि अगर पहले सपोज कल मेरे से कोई गलती हुई है या कुछ, थोड़े दिन बाद उनको मैं मिलती, दे विल बी नो चेंज इन हर एटीट्यूड, इन हर परसेप्शन, बिकॉज शी हैज फॉरगॉटन दैट.
Actually, completely forgotten, हाँ.
And completely, हम जैसे effort करते हैं, हम बहुत effort करते हैं वो past को भूलने का, but for them it is delete. जो हम इस program में कई बार कहते हैं ना delete, why are we saying that delete? क्योंकि हमने इन आत्माओं को देखा है जिन्होंने delete किया है, तो उनको देख कर एक inspiration होती, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. तो वो aim, objective रखना है कि किसी के साथ भी कुछ हुआ, डिलीट. एंड दादी ऑलवेज सेज कहती उसका निशान भी, मतलब ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, जस्ट हैज टू गो, नहीं तो दुख आएगा.
और वो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी, यू नो, दूसरे की हिस्ट्री, दूसरे के पास को भी हमें डिलीट करना आना चाहिए.
आपको पता है दादी कितने लोगों को मिलते हैं, मतलब शी इज इंटरेक्टिंग विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, तो हम सब अपनी अपनी जर्नी पे उतार और चढ़ाव से गुजर रहे हैं. अगर दादी हर एक की बात को ऐसे याद रखे, शी विल बी टोटली इन पेन. सो दे हैव प्रैक्टिस्ड एंड दे हैव अचीव्ड, एंड दैट्स वाई शी सेज कि अगर याद किया तो कभी सुखी नहीं होंगे. तो ये एक बात भी अगर हम ले लेते हैं, देयर इज लॉट्स टू लर्न इन दैट.
वंडरफुल. इन फैक्ट दीज आर द लेसंस, यू नो, जो हमें कोई अभी तक नहीं मिल रहे थे, तो आज दो दो शब्दों में, एक एक लाइन में हम वो लेसन्स ले रहे हैं. तो चलिए अगले लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दादी का. और इनफैक्ट अगर हम देखें सिस्टर शिवानी, ना सिर्फ वो बात है बल्कि जिस कन्विक्शन और प्यार से कही जा रही है वो बात, इट स्ट्रेट अवे एक्चुअली गोज टू योर इंटेलेक्ट.
वो सरलता से है, दिस इज सरलता. जब यहाँ कुछ क्लटर नहीं है ना, स्टेबिलिटी है, तो वो एक एक थॉट में पावर आ जाती है. जो हम लोग कई बार बात करते हैं कि पावरफुल एंड पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट तो ठीक है, इजी है, लेकिन पावरफुल एंड पॉजिटिव थॉट, तो पॉजिटिव थॉट तो हम क्रिएट कर सकते, लेकिन हमारी थॉट में पावर कब आएगी? जब यहाँ स्टेबिलिटी, जब यहाँ बहुत सारी क्लटर है ना, उस क्लटर में अगर आपने कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट भी किया, उसमें पावर नहीं,
वो वीक हो जाता है फिर, क्योंकि उसकी इतनी ताकत होती है. वंडरफुल. तो चलिए एक अगला पावरफुल थॉट लेने के लिए हम दादी की तरफ चलते हैं.
तो प्रकृति, माया और संपत्ति, तीनों बाबा अलग कर समझाया था. माया है पांच विकार, आगे कहते ये माया है ना, माया है ना, पर माया क्या है? माया है पांच विकार. प्रकृति है पांच तत्वों की, संपत्ति है धन. तो प्रकृति सत्युग में भी होंगी, धन सत्युग में भी होगा, पर माया नहीं होगी, यानी विकार नहीं होंगे. माया विकार आत्मा में भी चले गए हैं, प्रकृति में भी चले गए हैं, परमात्मा से भी दूर कर दिया है. अब भी सूक्ष्म ये ज्ञान, माया विकार आत्मा में भी चले गए हैं, फिर कहता आत्मा निर्लेप है। पांच तत्वों में भी चले गए हैं, अभी उनको अंदर से प्रकृति से और आत्मा से निकालना है परमात्मा की शक्ति से।
शिवानी दादी की ये बात की प्रकृति में और जीवन में माया का प्रवेश
आत्मा में,
हाँ आत्मा में भी, तो ये जो माया को अगर हम देखते हैं, दादी ने संपत्ति की भी बात की, समवेयर अगर हम जिंदगी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये धारणा है कि अगर पैसा है तो वही माया है, हाथ का मैल कहा जाता है उसे, कहा जाता है कि माया का खेल है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट, मतलब हम चाहेंगे कि आज थोड़ी क्लैरिटी आए कि पैसा ही माया है या माया और पैसा अलग अलग है।
जैसे दादी ने बहुत ब्यूटिफुली और सिंप्लिसिटी से उसको क्लियर किया कि आत्मा प्रकृति, तो आत्मा तो हमें पता है कॉन्शियंट एनर्जी, प्रकृति देह बॉडी, माया जो पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया है। क्योंकि ये माया क्यों है, क्योंकि ये है जो मुझे वो डिस्टर्बेंस की स्टेज में लाते, ये है जिनकी वजह से मुझे दुख होता अशांति होती। जब ये विकार आते हैं हमारे अंदर तब दुख अशांति की अनुभव होता, लेकिन हमने आज तक कैसे उसको जोड़ दिया था कि संपत्ति धन साधन इनको हमने माया कहा कि ये जब आएंगे तो दुख अशांति जीवन में आता। तो दादी ने उसको बहुत क्लैरिटी से सेपरेट किया कि माया वाइसेस है वो अलग, धन संपत्ति साधन ये अलग। आज भी देखो बहुत लोग कहते मोबाइल आया ना तब से जीवन में परेशानी आ गई है। मोबाइल ने जीवन में परेशानी नहीं लाई है,
कुछ तो होता ही होगा ना, कि जैसे धन ये संपत्ति आते ही या ये साधनों के साथ जो जुड़ाव है हमारा, कोई कौन सी ऐसी बात है जो उसे माया में कन्वर्ट कर देती है?
नहीं, इट इज वेरी क्लियर।
लेकिन पैसे के आते ही ये तो कहा जाता है कि वो सारे विकार और माया का आ जाता है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, पैसा कब माया के रूप में आ जाता है?
धन फिजिकल चीज है, साधन फिजिकल चीज है, इनके अंदर कोई वाइसेस नहीं है, इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इनके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो ये तो नहीं दे सकते। हाँ ये हो सकता है कि मेरे पास जब कुछ ज्यादा आता जाता है मैं उसके साथ रिस्पॉन्ड कैसे करती हूँ, यू नो।
अच्छा ये भी एक सिचुएशन है, तो
ये सिचुएशन है,
आना एक सिचुएशन है,
और ये तो पीपल, फिर भी लोगों से हम इंटरेक्ट करते तो उनकी एनर्जी है वाइब्रेशन है, इन चीजों के पास कोई वाइब्रेशन नहीं कोई एनर्जी नहीं, ये भी नहीं है कि हमें दुख लेना नहीं है इनसे, उनके पास दुख है ही नहीं देने के लिए, तो धन से दुख नहीं आता। लेकिन ये है कि अगर मेरे पास धन सडनली बहुत आ गया, पोजीशन आ गई, पावर आ गई, कहीं मेरे अंदर ईगो आ जाता है, वो धन नहीं लेकर आया लेकिन आई क्रिएट दैट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नाउ सडनली, बिकॉज मैंने अपनी आइडेंटिटी किससे रखी थी, आत्मा हूं ये नहीं पहचाना तो मेरी आइडेंटिटी किस चीजों पर बेस्ड थी, पोजेशन धन, तो जैसे जैसे वो बढ़ा अगर तो फिर मेरी आइडेंटिटी अगर उस पर डिपेंडेंट थी जो नेचुरल है उस पर पहचान नहीं थी, तो पोजीशन बढ़ी तो क्या हुआ, तो वो आइडेंटिटी उस पर बेस्ड होने के कारण कि ये मैं हूं, तो जैसे जैसे वो बढ़ता गया मैं अपने आप को क्या फील करता गया कि मैं बहुत बड़ा होता जा रहा हूं। सो ये ईगो या कहें लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग तब है जब मैं आत्मा हूं ये पता है, जब मेरी सेल्फ एस्टीम और चीजों पर डिपेंडेंट है वो सेल्फ एस्टीम लो है और वो फ्लक्चुएट करती है, आज धन है कल उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेरी सेल्फ एस्टीम फ्लक्चुएट करेगी क्योंकि वो एक टेम्पररी चीज पर बेस्ड है। तो धन माया नहीं है, लेकिन ये होता है कि कई आत्माओं के अंदर स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो धन आने से या साधन बहुत जाने से पोजीशन आने से उनके अंदर अहंकार क्रिएट होता, लेकिन वो अहंकार आत्मा की अपनी क्रिएशन है, और इसलिए दादी ने क्लियर किया संपत्ति अलग है, विकार किसके अंदर है, माया किसके अंदर है, आत्मा में है, और उसका कनेक्शन धन से नहीं है। ये भी कई बार हम कहते संपत्ति आएगी तो अहंकार तो आ ही जाएगा, या संपत्ति है तो दुख अशांति है, साधारण है तो खुश है, बट नो, व्हेन वी कम हियर टू द ब्रह्मा कुमारीज एंड वी अंडरस्टैंड के दुख अशांति कमियां ये यहाँ की चीज है, बाकी सब चीज बाहर है, तो हमें दोनों के बीच एक बहुत डिस्टिंक्ट सेपरेशन पता चलता है और ये समझ में आता कि इनका इन्फ्लुएंस आत्मा पर नहीं होना है, तो कोई कनेक्शन नहीं है कि जितना धन आपके पास है या तो आप उतने खुश हैं या आप उतने
अहंकारी हैं या विकार हैं,
नथिंग, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। आपके पास बहुत धन हो, संपत्ति हो, लेकिन आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी है, आपके अंदर ऑनेस्टी है और आपके अंदर पीस है, हैप्पीनेस है। इट्स नथिंग टू डू विद मनी। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत साधारण तरह से चल रहे हैं लेकिन आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो आपके अंदर दुख है, अशांति है। तो दे आर टोटली डिस्टिंक्ट चीजें। एंड राजयोगा में तो विशेष हम यही अभ्यास करते कि भले आपके पास सब कुछ है उसको छोड़ना नहीं है। लिव इन योर हाउस विद ऑल योर कम्फर्ट्स, गाड़ी है, गाड़ी यूज कर रहे हो, मोबाइल्स हैं, मकान अच्छे अच्छे बने हुए हैं आपके, आपके पास जो है आप सब कुछ यूज करो। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए मुझे इन सब चीजों का संन्यास करना है, नहीं, मुझे संन्यास करना है बॉडी कॉन्शियसनेस का, मुझे संन्यास करना है विकारों का। आज दिन तक हमने सुना कि अगर आत्मा परमात्मा को पहचानना चाहती है या उससे कनेक्शन जोड़ना चाहती है तो उनको इन सब चीजों का संन्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि इन चीजों को इन चीजों की तरफ खींच जाती है। लेकिन जब आत्मा का परिचय मिला, बुद्धि वो पावरफुल हो गई, तो आत्मा सब कुछ के बीच रहते हुए भी एकदम डिटैच्ड रहती, और सिर्फ साधनों से डिटैच्ड नहीं, लोगों से भी डिटैच्ड, और सिर्फ लोगों से ही नहीं, अपने देह के, अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस से भी डिटैच्ड। आप सब चीजों का संन्यास कर सकते हो लेकिन शरीर शरीर तो आपके साथ जाएगा ना, आप जहां जाएंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि जब हम कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कुछ करना पड़ता है, सब चीजों को छोड़ना पड़ता है, इट्स अ वेरी वेरी, और आप गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो आप तक आप पहुंच ही नहीं सकते। वह
दादी हमेशा बहुत स्पष्ट हमें करते कि जीवन का जो फाउंडेशन है वो साधना है, मेडिटेशन है। साधना को साधन पर डिपेंडेंट नहीं करना, साधना आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेडिटेशन जर्नी आपके इनर वर्क, साधन यूज करने के लिए है तो भी ठीक, कल नहीं होंगे किसी कारण से तो भी यहां उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो फिर संपत्ति विकारों का कारण नहीं है, माया का कारण नहीं है। हमें उल्टा मेडिटेशन से और ज्ञान से ये समझ में आता कि धन संपत्ति को भी अब राइट तरह से हम अर्न भी करें और राइट तरह से यूज भी करें, यू नो, दोनों प्रोसेस, एक है अर्न करने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट ट्रस्टी बनकर जीवन में यूज करने का तरीका। दुख अशांति एक और कारण से भी आता कि जब वो धन संपत्ति मेरे पास आ जाती है तो साथ साथ खोने का भी डर आ जाता है,
यू नो,
सो आई जस्ट होल्ड ऑन टू इट। लेकिन यहाँ हम बहुत क्लैरिटी से ये सीखते हैं कि ट्रस्टी बनकर जीना है। हमने अपना जीवन जैसे परमात्मा को सरेंडर किया, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन ट्रस्टी है तो ट्रस्टी संभालता है, अटैच्ड नहीं होता। तो अटैच्ड नहीं होगा तो इनसिक्योरिटी फियर
नहीं होता ना, क्योंकि ट्रस्टी वो है जिसकी ट्रस्ट में दिया गया है।
लेकिन संभालता वो बहुत अच्छी तरह से, ट्रस्टी केयरलेस नहीं होता, वो उल्टा और भी अच्छी तरह से संभालता क्योंकि वो स्टेबिलिटी से संभालता, उसमें उसका अपना फियर या इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, तो फिर दुख अशांति कुछ कारण ही नहीं बनता।
वेरी ट्रू, कॉन्फिडेंस से आप संभालते हैं फिर कि आई एम जस्ट अ ट्रस्टी और इसीलिए व्हाट एवर डिसीजन आई विल टेक।
तो दादी डेफिनेटली जो भी सभी भाई बहने घर गृहस्थ में रहते हैं और दादी के पास ऐसे क्वेश्चंस लेकर जाते हैं कि दादी ये प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस करें, दादी ऑलवेज सेज डू एवरीथिंग, लेकिन यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ कि फंस नहीं जाना उसमें, अटैचमेंट के साथ नहीं, इंस्ट्रूमेंट बन के, ट्रस्टी बन के करना।
तो आज दादी की जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम कह रहे हैं कि मतलब दो दो लाइन में वो ऐसी ऐसी बातें जीवन का ऐसा सार हमें देती हैं, चाहे वो खुद की पहचान की बात थी, चाहे ये बात कहना कि हम कहाँ किस किन बातों में फंस कर रह सकते हैं, यू नो, कौन सी ऐसी चीजें हैं, एक एक शब्द में जो क्लैरिटी से हमें पता चलता है। एंड सिस्टर शिवानी थैंक यू सो मच
कि
इस तरह से
वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस,
वेरी ट्रू, यू नो, लाइक ईच सेंटेंस बिकम्स अ लेसन, यू नो, समवेयर। तो अगर आपको अनुभव हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है और ये प्रयास जो है अवेकनिंग का, ये आपको कैसा लग रहा है, हमारे साथ जरूर शेयर करें, या तो आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन ये प्रयास बीच बीच में अपने बड़ों से मिलने का जो हमें मौका मिलता है वो हम जरूर कायम रखेंगे, आगे भी इस तरह से मिलते रहेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।